दिन भर तारीख 12 सितंबर दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक रेस्तरां में लगी आग, 80 से ज्यादा मौतें।
पहले सिलेंडर फटा है सब आप बता रहे हैं, फिर उसके बाद में कोई पीछे कुछ रखा हुआ था वो भी ब्लास्ट हो गया। दो बार ऐसे धमाके हुए, पहले छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ।
कालका शिमला रेल मार्ग पर पर्यटकों से भरी ट्रेन पटरी से उतरी, दो ब्रितानी पर्यटकों की मौत। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध पर विशेष सीरीज में बताएंगे कैसे लड़ाई जीतने के ठीक एक दिन बाद जीतने वाले सैनिक युद्ध बंदी बन गए।
हम यूं ही आगे बढ़े, वो तीनों जो दहने वाले टैंक थे उनके ऊपर से एक आदमी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। अभी वो 30-40 गज के होंगे हमसे, आगे बढ़ाए उनका आ जाओ हाथ खड़े कर।
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, विनीत खरे से। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावद कस्बे के एक रेस्तरां में गैस सिलेंडर के धमाके में 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। ये रेस्तरां एक बस स्टॉप के पास था और उस वक्त कर्मचारियों, दफ्तर में काम कर रहे लोगों और स्कूली छात्रों से भरा था। पुलिस का कहना है कि धमाके से पास के ही एक कमरे में रखे गए विस्फोटक में भी धमाका हुआ, जिससे चारों ओर भगदड़ मच गई। बचाव कर्मियों ने मलबे से लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो सीरिया के पड़ोसी देशों को 3 अरब यूरो का ऋण दे ताकि गृह युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। विक्टर ऑर्बन ने कहा कि इस आर्थिक मदद से यूरोप पहुंच रहे शरणार्थियों को रोका जा सकेगा। हजारों लोग हंगरी के रास्ते उत्तरी और पश्चिमी यूरोप पहुंच रहे हैं। हंगरी की दक्षिणपंथी सरकार ने मंगलवार को कानून में बदलाव किए थे। नए कानून के अनुसार गैरकानूनी रूप से हंगरी पहुंचे शरणार्थियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सीरियाई शरणार्थी का कहना था,
We came from Hungary. The situation is so bad. They put us in jails.
हम हंगरी से आए हैं, स्थिति बहुत खराब है, वो हमें जेलों में डाल रहे हैं। हम वहाँ एक हफ्ते थे, वहाँ बहुत कम खाना है, वहाँ हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। ये थे एक शरणार्थी के शब्द। सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में शुक्रवार को एक मस्जिद में क्रेन गिरने के हादसे की जांच शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक घटना में कम से कम 107 लोग मारे गए हैं और 230 घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 भारतीय भी हैं और 15 घायल हुए हैं। सऊदी अरब के सिविल सुरक्षा संस्था के प्रमुख लेफ्टिनेंट सुलेमान बिन अब्दुल्ला अल अम्र ने कहा कि घटना से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और ये जांच भी की जा रही है कि निर्माण स्थल कितने सुरक्षित हैं। कालका शिमला रेल मार्ग पर कालका के करीब एक टॉय ट्रेन के पटरी पर से उतर जाने के कारण 2 ब्रितानी महिलाओं की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये ट्रेन ब्रिटेन के 37 पर्यटकों ने बुक की थी। घायलों को इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है। हादसा कालका से करीब 3 किलोमीटर दूर हुआ। रेलवे के एक प्रवक्ता AK सक्सेना ने BBC को बताया कि 4 कोच वाली ये ट्रेन विदेशियों के एक समूह ने बुक की थी। दोपहर 12:45 पर ट्रेन कालका स्टेशन से रवाना हुई। करीब 12:58 पर ट्रेन 2 कोच पटरी से उतर गए। अनुभवी वामपंथी नेता और सांसद जेरमी कॉर्बिन को भारी बहुमत से ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नया नेता चुना गया है। पूर्व मंत्री और गॉर्डन ब्राउन के सहयोगी टॉम वॉटसन को पार्टी का उपनेता चुना गया है। अपने भाषण में जेरमी कॉर्बिन ने एक सहनशील और संयुक्त ब्रिटेन के लिए लड़ने की बात कही। उन्होंने समाज में कुरूप स्तर की असमानता से निपटने की भी बात कही और मिस्र की सरकार ने देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बारे में आधिकारिक कारण नहीं दिए गए हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, हम आपको बता दें कि शनिवार का ये समय BBC इंडिया बोल का होता है, लेकिन आज ये कार्यक्रम हम 9:30 लेकर आएंगे, यानी कि घटना चक्र के वक्त। इस समय कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, जहां की आज की जो सुबह थी वो बहुत दुखद सुबह थी। एक रेस्तरां में आग लगने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि हादसे में मरने वालों के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
उस घटना में जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था और वहाँ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करें। मैं निरंतर संपर्क में हूँ। घटना दुखद है, जिसने मुझे अंदर तक हिलाया है। उस घटना के कारणों की जांच भी की जाएगी।
दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन इस छोटे से रेस्तरां में इतनी बड़ी आग कैसे लगी, प्रशासन इससे कैसे निपट रहा है, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने बात की झाबुआ के SDM अशोक जाधव से।
वहाँ बस स्टैंड के आसपास का इलाका है, वो थोड़ा गाड़ियां खड़ी रहती वहाँ। सुबह का टाइम था तो एक रेस्टोरेंट पे अचानक ब्लास्ट हुआ, फिर लोगों ने देखा छोटा ब्लास्ट हुआ तो लोग गए, तो कुछ बड़ा ब्लास्ट हो गया। अब ये सब बता रहे कोई एक्सप्लोजिव वहाँ रखा हुआ था अंदर, ऐसा बता रहे हैं, अभी वो जांच कर रहे हैं हम लोग।
एक्सप्लोजिव था वहाँ पर?
हाँ एक्सप्लोजिव था बता रहे हैं,
जी
रखा हुआ था। तो हम लोग थोड़ा वो उसका रेस्क्यू में लगे हैं
जी। लेकिन ये बता रहे हैं कि सिलेंडर से धमाका हुआ?
जी पहले सिलेंडर फटा ऐसा आप बता रहे हैं, हम लोग तो स्पॉट पे थे नहीं उस समय। फिर उसके बाद में कोई पीछे कुछ रखा हुआ था वो भी ब्लास्ट हो गया, दो बार ऐसे धमाके हुए, पहले छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, ऐसा इनका कहना है।
जी ये जगह कौन सी है?
पेटलावत तहसील है ये, क्या है बस स्टैंड वाला इलाका है खांडला रोड पर।
अभी आप पुलिस जो है वो जांच कर रही है?
हाँ जांच।
और कितनी डेड बॉडीज निकल गई हैं
वहाँ? अभी लगभग 85 के आसपास डेड बॉडी है।
कुछ लोग घायल भी हैं?
हाँ घायल भी हैं।
तो घायल लोगों को कहाँ ले जाया गया है?
एक तो पास में हमारे दाहोद है और रतलाम है और झाबुआ
जी,
और यह लोकल में भी है, जिनको कम इंजुरी है वो लोकल में।
और ये इंजरीज कैसे हैं, क्या बर्न की इंजरीज हैं?
हाँ मतलब जैसे धमाका हुआ कुछ गिरे हैं, कुछ इस टाइप से को लगा है, कहीं कांच टूट के लगे हैं इस टाइप का है।
ये थे झाबुआ के SDM अशोक यादव। मध्य प्रदेश के झाबुआ में रेस्तरां में आग लगने से 80 से ज्यादा आज मौतें हुई। ऐसा लगता है कि मानो आज का दिन दुर्घटनाओं का ही दिन हो। झाबुआ से सीधे चलते हैं उत्तर रेलवे की तरफ। कालका शिमला रेलमार्ग पर कालका के करीब एक टॉय ट्रेन के पटरी से उतर जाने के चलते दो ब्रितानी लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। और जानकारी के लिए मैंने बात की उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा से।
ये एक चार्टर्ड ट्रेन थी IRCTC की, नैरोगेज सेक्शन है, नैरोगेज के चार कोचेज इसमें थे और ये 12:45 पर कालका से चली थी। अनफॉर्चुनेटली जर्नी के 10 मिनट बाद इसका डिरेलमेंट करीब कालका स्टेशन से 5 किलोमीटर बाद हो गया, जिसमें इसमें से चार में से तीन कोचेज इसके डिरेल कर गए थे। उसमें अनफॉर्चुनेटली दो पैसेंजर्स की डेथ हो गई है।
ये जो दो पैसेंजर जिनकी डेथ हुई है वो कहाँ के लोग हैं?
इसमें ये ब्रिटिश ग्रुप था और तीन तीन चार चार लोगों का ग्रुप था, तो अभी इनके नेम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, कोशिश करी जा रही है कि पता चल जाए। जो टूर ऑपरेटर थे इनके वो भी खुद भी इंजर्ड हैं इसमें, उनके थ्रू भी पता नहीं चल पा रहा है। इनका नाम मिस्टर एंड्रूस था, जैसे इनकी आइडेंटिटी पता चलेगी हम आपको बता देंगे। 10 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे जिसमें से 2 ग्रीवियस थे और 4 को सिंपल इंजरीज थी और 4 लोगों को ब्रशेस थे सिंपल।
अच्छा ये जो पूरी ट्रेन है ये पूरी चार्टर ट्रेन थी आप बता रहे हैं? और इसमें जो सारे पैसेंजर्स थे वो क्या सारे ब्रिटिश नागरिक थे या बाकी कहीं और के भी थे?
ये सारा ब्रिटिश का बताया जा रहा है, लेकिन वो पता करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि शायद ब्रिटिश में और लोग ना रहे हों, कहीं और के रहने वाले ना हो। वो उनकी आइडेंटिटी जब पूरी पता चल जाएगी तब पता चल पाएगा, लेकिन ये ब्रिटिश ग्रुप था जो बताया गया है।
कैसे ये डिरेल हुई, कैसे पटरी से उतरी इसकी? कुछ
इसका एग्जैक्ट कॉज अभी पता नहीं चला है, इसमें कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है या फिर कुछ आगे इंफ्रिंजमेंट आने की वजह से तो नहीं हुआ है, वो इसके लिए जांच हो रही है जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्किल के करेंगे, उससे एस्टेब्लिश हो पाएगा कि क्या रीजन था। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको होटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल में अटेंड किया जा रहा है और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर DRM अम्बाला डिवीजन के खुद हैं और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे भी वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे AK पुतिया साहब दिल्ली से गए हैं, मेंबर इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड वहाँ पर पहुँच गए हैं, वो साइट की विजिट करेंगे और हॉस्पिटल्स की विजिट करेंगे। रेलवे मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज मनोज सिन्हा जी और सुरेश प्रभु जी ने इस पर बहुत अफसोस जाहिर किया है और उन्होंने हर प्रकार की मदद जो कंसर्न लोग हैं उनको देने के लिए कहा है।
ये थे उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कालका शिमला रेलमार्ग पर पर्यटकों से भरी ट्रेन पटरी से उतर गई। रुख विदेश का। सऊदी अरब में मक्का में कल देर रात मस्जिद अल हरम में एक क्रेन गिरने से करीब 107 लोग मारे गए, 230 से ज्यादा लोग घायल हैं, मृतकों में 2 भारतीय भी हैं। मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। एक ब्रितानी टूर ऑपरेटर साजिद मूसा ने हादसे के वक्त मक्का के मौसम को कुछ इस तरह से बयां किया। मूसा कह रहे थे जो मैंने देखा वो भयानक था, ब्रिटेन में भी मैंने कभी इस तरह का मौसम नहीं देखा, तेज काटने वाली हवाएं, तूफान, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो बाइबल में लिखा गया मौसम असलियत में आ गया हो। सुलेमान अल अम्र सऊदी अरब की नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा हादसा ठीक 5:23 पर शाम को हुआ। वजह थी 35 से 40 किलोमीटर तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं। पेड़ उखड़ गए, दूसरे इलाकों को भी नुकसान हुआ। ये क्रेन तो इतनी तेज हवाओं के कारण गिरी जिससे इतने लोग मारे गए और घायल हुए। सऊदी अरब के अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू की है। कुछ देर पहले मैंने बात की सऊदी अरब में अरब न्यूज के संपादक सिराज बहाव से और पूछा कि इस समय वहां का क्या चल रहा है।
इस समय ये हो रहा है कि वो पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो जो लोग जो जो खेमों से या जो जहां वो रहते हैं वहां के जो मिसिंग है उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि फिर जो आइडेंटिफिकेशन हो उसके लिए आसानी हो, नंबर एक। नंबर दो, वो जहां मलबा गिरा था ये क्रेन का, वो मलबा पूरी तरह से वहां से साफ कर दिया गया है, और जो ग्रैंड मॉस्क है यानी जो मस्जिद अल हरम जिसको कहते हैं उसके अंदर जो लोग जो हाजी आए हुए हैं वो जो तवाफ है वो तवाफ यहाँ पर जारी है। तो अब वहाँ पे कोई ऐसा नजर नहीं आता कि कल इतने जबरदस्त जो है वहाँ पे ये ट्रेजेडी हुई थी।
ये बताइए कि जो कल ये हादसा हुआ उसमें ये पता चला है कि दो हिंदुस्तानी भी थे, ये कौन है ये हिंदुस्तानी?
देखिए दो हिंदुस्तानी हैं, एक वेस्ट बंगाल से हैं और एक केरला से हैं, इसकी पुष्टि हो गई है। यहाँ के जो इंडियन काउंसिल जनरल है बी एस मुबारक, उन्होंने कहा है कि ये दो लोग जो हैं वो कन्फर्म्ड है कि उनका जो है उनकी डेथ हो गई है और उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 12 इंजोर्ड इंडियंस हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में हैं, उनकी इंजरी क्रिटिकल तो नहीं है लेकिन उनको किसी को राइट हैंड का फ्रैक्चर है, किसी को सर पे चोट आई हुई है, तो एक तरह से इंजोर्ड जो है वो कम अज कम 12 इंजन जो है वो इंजोर्ड है, ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल में है। एक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें तमाम सारे हाजियों से ये पूछा गया है कि आपके बिल्डिंग में से या आपके जानने वालों में से जो जो मिसिंग है उनका नाम बताएं, और इस तरह से जो हिंदुस्तान से जो कॉल आ रही है, पाकिस्तान से जो कॉल कर रही है, उसको कोलेक्ट करके ये मालूम किया जा रहा है कि कौन कौन मिसिंग है, उनके लिए फिर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है।
क्या इस बात की जाँच की जा रही है कि ये इतनी बड़ी ट्रेन कैसे गिरी?
कल ही रात में ये जो मक्का के गवर्नर हैं प्रिंस खालिद अल फैसल, उन्होंने वहां पे उसका दौरा किया, वहां पे ट्रेन गिरी थी, और उन्होंने फौरी तौर पे उसने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और ये मालूम करने के लिए कि ये ट्रेन वहां पे कैसे गिरी। इसलिए कि इस तरह का वाकया पहले मक्का में कभी नहीं हुआ, इतनी बहुत सारे एक्सपेंशन वहां पे होते रहे, पिछले 30 सालों से ये मस्जिद जो है उसको उसका एक्सपेंशन होता रहा, उसको बढ़ाने का काम कई सालों से चलता रहा, लेकिन क्रेन जो है इस तरह का हादसा वहां पर कभी नहीं हुआ। तो जो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो सिविल डिफेंस है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने कहा कि वो जो बारिश थी और जो तूफानी हवाएं उस वक्त चल रही थी कल शाम को, उसकी वजह से और बिजली क्रेन पे गिरी है उसकी वजह से ये क्रेन जो है वो अपने बेस से टूट गई और इस पे मस्जिद पे आ गई।
हादसा किस तरह से हुआ और किस तरह से जांच का काम चल रहा है, जानकारी दे रहे थे सऊदी अरब में अरब न्यूज के संपादक सिराज बहाव।
बीबीसी इंडिया बोल।
भोपाल का 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, हिस्सा ले रहे हैं करीब 5,000 प्रतिनिधि। चर्चा हिंदी की दशा और दिशा पर। शामिल हैं अमिताभ बच्चन से लेकर कई बड़े बुद्धिजीवी, लेकिन कई ऐसे साहित्यकार हैं नदारद जिन्होंने हिंदी को बहुत कुछ दिया। सवाल है कि क्या इस तरह के सरकारी सम्मेलनों से हिंदी की दशा और दिशा सुधरेगी। शनिवार को बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय, लेकिन 7:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे घटना चक्र के वक्त। राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो 9:30 बजे हमें आपके कार्यक्रम में शामिल होने का इंतजार रहेगा। और अब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर हमारी विशेष श्रृंखला। लड़ाई में यूं तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा आपने कम सुना होगा कि लड़ाई जीतने के ठीक एक दिन बाद सभी सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए हों। 1965 में 4 सिख जवानों के साथ ऐसा ही हुआ। क्या था पूरा माजरा, सुनिए रेहान फजल से इस युद्ध की 12वीं कड़ी में।
4 सिख ने बरकी की लड़ाई में शानदार काम किया था, लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। 11 सितंबर की सुबह 9:30 बजे उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह को 7 इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय बुलाया गया और पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें एक खास जिम्मेदारी सौंपी। हरबख्श सिंह सिख रेजिमेंट के कर्नल भी थे। उन्होंने अनंत सिंह से कहा कि उन्हें सैनिक ट्रकों से वलतोहा पर उतार दिया जाएगा और फिर वहां से उन्हें पैदल 19 किलोमीटर चलकर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर खेमकरण कसूर सड़क पर एक रोड ब्लॉक बनाना होगा। ये काम 12 सितंबर की सुबह 5:30 बजे तक हो जाना चाहिए। उसी समय खेमकरण में पहले से लड़ रही 4 माउंटेन डिवीजन के सैनिक 9 हॉर्स के टैंकों के साथ आगे बढ़कर सुबह 8 बजे तक उनसे जा मिलेंगे। उस लड़ाई में भाग लेने वाले ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह याद करते हैं।
12 सितंबर हमारी बटालियन का बैटल ऑनर डे है। वो दिन है 1897 में इन्हीं कोहाट के इलाके में, दरगई के इलाके में, इसके ऊपर जो पहाड़ियाँ थी, खानकी वैली कहते हैं उसमें, समाना रिज, उस पर ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स अंडर थे हम उस वक़्त, और हमारे पास वहाँ काफ़ी सारी पोस्ट थी। एक पोस्ट थी सारागढ़ी, एक मेन किला था बाई, एक था दाएं, फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए छोटी सी पोस्ट थी सारागढ़ी। 21 जवान थे, 10,000 कबायलियों ने, राकजाइज ने हमला किया, 9 हमले किए, सभी नाकामयाब किए। 21 बंदों को उन्होंने ल्योर करने की कोशिश भी की, ल्योर नहीं हुए। 21 के 21 मारे गए, उनको हार हुई, हजारों को। 21 के 21 जो मारे गए, इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, सबको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस वक्त सबसे बड़ा अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस, आज के परमवीर चक्र के बराबर है। ना कहीं 21 आदमी मारे गए, ना 21 कहीं परमवीर चक्र कभी इकट्ठे मिले हैं।
12 सितंबर का दिन 4 सिख का बैटल ऑनर दिन था। जनरल हरबख्श सिंह चाहते थे कि 4 सिख के जवान अपने बैटल ऑनर डे को खेमकरण में उस अभियान को पूरा करते हुए मनाए। हालांकि अनंत सिंह की बटालियन को एक दिन पहले खत्म हुई बरकी की लड़ाई में खासा नुकसान हुआ था और उनके सैनिक लगातार 7 दिनों तक बिना किसी आराम के लड़ने के बाद बेहद थके हुए थे, लेकिन वो अपने जनरल को ना नहीं कह पाए और उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली।
11:30 बजे ऑर्डर मिले, शाम को 5 बजे हम निकल पाए, पैदल वापस थके हुए, ना नहाए ना धोए। हम 5 बजे चल के शाम को 6:30-7 बजे हुडियारा पहुंचे पैदल। वहाँ हमें ट्रांसपोर्ट मिली, पीछे भिक्कीबेन पहुंचे। भिक्कीबेन में हमें 8 बजे रात को खाना मिला गर्म, पहली दफा 6 दिन के बाद। वहाँ एक लेफ्टिनेंट विर्क थे हमारे क्वार्टर मास्टर, बड़े प्यार से खाना खिलाया और हमने भी दबा के खाया। उसके बाद हमें उसी ट्रांसपोर्ट में एक जगह थी वल्टोहा, वहाँ भेजा गया। हम वहाँ रात को 10 बजे पहुंचे, 10:30-10 बजे अनंत वहाँ आके मिले। उन्होंने 4 माउंटेन डे ने ये बोला कि खेमकरण में दुश्मन की स्ट्रेंथ जो आई थी, पहले कब्जा किया था, वो चले गए हैं और एक वीक इन्फेंट्री कंपनी है, टैंक्स नहीं है, आप वहाँ रोड ब्लॉक लगाइए, सुबह हम यहाँ से अटैक करेंगे 4 माउंटेन डे और आपके साथ लिंक अप कर लेंगे डेफिनेटली बाय 8:00 इन द मॉर्निंग।
कमलजीत सिंह याद करते हैं कि उनसे सुबह 5 बजे तक उस जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया था, इसलिए उसके बाद वो लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़े। बीच में उनका सामना एक पाकिस्तानी टुकड़ी से हुआ।
10:11 की रात को हमने ब्रिटिश कब्जा किया। 11:12 की रात में हम इतनी दूर से एक डिफरेंट फॉर्मेशन में, डिफरेंट इलाके में, कुछ पता ही नहीं, वहां पर हम भेजे जाते हैं।
और आप
एक टास्क दिया जाता है कि दुश्मन के पीछे जाके रोड ब्लॉक लगाओ, डेब अटैक करेगा, लिंक अप हो जाएगा और फिर वो सारा गड़ी को मनाने का मजा तो वहीं आएगा। और इसी जोश में, इसी भावना से, इसी मोटिवेशनल विगर से हम लोग भी वहां से थके टूटे। यहां से वल्टोहा से हम तकरीबन 200 आदमी अपने कमांडिंग ऑफिसर के नीचे, कर्नल अनंत सिंह, हम बड़े बहुत शेर आदमी था, हम, हमारे पास गाइड करने के लिए ना कोई गाइड मिले और ना ही हमें कोई नक्शे मिले। लकीली हमारी पलटन में हमने, कर्नल अनंत ने ऐलान किया, 2 जवान खड़े हो गए, वो कहने लगे जी हम तो खेमगन गए। उन्होंने हमें गाइड किया, पहले तो हम रेलवे लाइन के साथ साथ भागे, लिटरली भागे। उन्होंने कहा था कि वहाँ टैंक नहीं है, लेकिन कर्नल अनंत ने कहा अगर टैंक हुए तो मैं कैसे लड़ूंगा। 2 RCL जो तकरीबन 350-400 pounds की होती हैं, जवानों ने कंधों पर उसका भारी एमुनिशन कंधों पर उठा के हम उनको ले चले। लेकिन क्योंकि रात के मिडनाइट चले, हमने रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश करना था सुबह 5 बजे तक, RCL की वजह से हमारा डिले हो रहा था। आधे रास्ते से कर्नल अनंत ने फैसला किया कि ये RCL नहीं ले जा पाएंगे, इन एनी केस हमें ये बताया गया है कि वहाँ पर कोई टैंक नहीं है, RCL वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने टास्क तो अपने टाइम में करना ही करना। हम बढ़ते गए, रास्ते में एक जगह पर दुश्मन की एक पार्टी ने हमें चैलेंज किया। हम इतने जोश में थे, इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि वो भाग गए। उन्होंने फायर नहीं किया, ये नहीं समझ आई क्यों नहीं फायर किया, लेकिन भाग गए एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके कि यहाँ से इंडियन फोर्सेस के बंदे आ रहे हैं।
सुबह 4 बजे तक 4 सिख के जवान खेमकरण गांव के 1 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गए थे। वहां वो ये देखकर अचरज में पड़ गए कि चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी टैंक दिखाई दे रहे हैं। सुबह हुई तो पता चला कि जिस खेत में वो छुपे हुए हैं उसमें भी पाकिस्तानी टैंक खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी उन्हें देखते ही अपने टैंकों में सवार हुए और गोलियां चलाते हुए उन्हें घेर लिया।
दो 250 गज चले होंगे तो दाहिने से हमें एक टैंक, दो टैंक, दो तीन टैंक पर दिखाई दिए। सरकंडे की पीछे से रेलवे लाइन के साथ दाहिनी तरफ से हमारे 250-300 गज वो निकल आए। कान्हा आनंद के बिल्कुल साथ में एक मैच चल रहा था। एक हमारे एडजुटेंट उस वक्त ऑफिशिएटिंग जो कर रहे थे, चहल, हम चल रहे थे, उन्होंने कहा पास करो सबको, इकट्ठे जैसे अटैक जरा ऐसे मत जाओ, बहुत कैजुअल्टी होंगी, फैल जाओ पलटूनों में और बिल्टअप एरिया में चले जाओ, फैल के खुले होके ताकि कैजुअल्टी कम हो जाए। हम उसी वक्त फैलना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली हमने तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर के इलाके में फैल गए। हम जो ही आगे बढ़े वो तीनों जो दहने वाले टैंक थे उनके ऊपर से एक आदमी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। अभी वो 30-40 गज पे होंगे हमसे। आगे बढ़ाए, उन्होंने कहा आ जाओ कर्नल साहब, हाथ खड़े कर दो। कर्नल अनंत सोच में पड़ गए, हमें बोला तुम यहीं ठहरो, खुद अकेले आगे बढ़े। इतने में हमारे एक मेजर, जो मेजर सिद्धू थे, वो थोड़ा पीछे रह गए थे। अब लकीली उन्होंने 30-40 आदमी लेके वो तो पीछे गन्नों के पीछे से होके वापस आ गए। हम 3-3.5 किलोमीटर में, कोई जवान यहाँ, कोई जेसीओ वहाँ, कोई वहाँ, 3 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 120 आदमी पकड़े गए। हमारे पास एक राइफल होती है, एंटी टैंक राइफल। हमने कहा 30 गज पे टैंक अभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनको। हमने वो अपनी राइफल ली, 2 बार फायर किया, फायर नहीं हुआ, क्योंकि वो हथियार हमने फायर करके देखे ही नहीं।
उसी टुकड़ी में शामिल कर्नल चहल, जो उस समय लेफ्टिनेंट थे, याद करते हैं कि उन्होंने पीछे से भागने की कोशिश की थी।
पीछे से मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने देखा है कि एक टैंक मेरे तकरीबन 50 मीटर के फासले पर खड़ा है, उसके ऊपर पाकिस्तानी जेसीओ था। जब उसने देखा कि मैं खेत में छुपा हुआ हूँ तो उसने मेरे ऊपर स्टेन गन से फायर किया। वो स्टेन का फायर मेरी कमीज में से नहीं, मैंने भी रियलाइज किया कि अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो एक हाथ लेफ्ट हैंड मैंने ऊपर रेज कर दिया और दाहिना हाथ स्टेन गन पर था। स्टेन गन पर होने के कारण उसने फायर किया और मेरी कमीज में से गोली निकल गई। देन उसने शाउट किया कि या तो आप सरेंडर कर दो नहीं तो अभी मार दूंगा। तो मैंने रियलाइज की सिचुएशन और स्टेन नीचे गिरा के सरेंडर कर दिया था।
उधर कमलजीत हथियार डाल ही रहे थे कि पाकिस्तानियों की गोलियों का एक बस्ट उनकी तरफ आया।
दुश्मन ने एक बस्ट मेरी तरफ मारा, क्योंकि मैं जब अपना सारा इक्विपमेंट फेंक रहा था तो मैं बुरा पानी पी लूं, उसके मन में क्या आया, उसने बस्ट मारा स्टैंड से, एक गोली आके शोल्डर पे लगी, खून निकलना शुरू हो गया, शर्ट फट गई, बच गए। हाथ खड़े किए, टैंक चारों तरफ अलग अलग जगह से इकट्ठे करते हुए खेमकन के पीछे एक पुलिस स्टेशन था उसमें ले गए। उसमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हुआ, इंटरोगेशन हुई, उसके बाद ऑफिसर्स को, जवानों को पैदल चलाया, ऑफिसर्स को हमारे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया, हाथ पीछे बांध के ट्रकों के रेलिंग के साथ बांध दिए गए।
रक्षा मंत्री चव्हाण को इस घटना के बारे में अगले दिन पता चला। उन्होंने अपनी डायरी में इसे स्टूपिड इंसिडेंट, यानी एक बेवकूफी भरी घटना की संज्ञा दी। हरबख्श सिंह ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखा,
हमें उस समय इसका एहसास नहीं हुआ कि 4 सिख के जवान बरकी पर कब्जे के दौरान 2 दिन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोए थे और इस ऑपरेशन में उनके बहुत से लोग हताहत हो गए थे। उनके कमांडिंग ऑफिसर अनंत सिंह, जिन्हें मैंने ये जिम्मेदारी दी थी, एक अच्छे सैनिक थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि उनके सैनिक बुरी तरह से थके हुए हैं।
जब युद्ध के बाद 4 सिख के जवान भारत वापस भेज दिए गए तो जनरल हरबख्श सिंह फाजिलका आए थे। कमलजीत सिंह कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचा, लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बहुत से सवाल उठाए जाते हैं इसके ऊपर, उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा सोचा, पर इट वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच आई थिंक शुड नॉट हैव बीन डन। यू डोंट मूव अ बटालियन हु हैज डन सच एन इंपॉर्टेंट टास्क, दे हैवन सोए नहीं है, थके हुए हैं, बुरे हाल है, रोटी नहीं खाई। बता रहे हैं कि 39 आदमी मर गए हैं और 125 आदमी जख्मी हो रखा है। उस पलटन को बिल्कुल ही दूसरी जगह में भेज देना, इलाके को रिकॉनसिस ना किया जाना, ये एक जुआ है जो लड़ाई में कामयाब हो जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं हो तो आपके सामने है जो स्टेट है।
इस घटना को उस समय मीडिया से छिपा कर रखा गया। ताकि इससे भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास न डगमगाए। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
1965 भारत पाकिस्तान युद्ध पर हमारी विशेष श्रृंखला की ये थी 12वीं कड़ी। इस कड़ी का पुनः प्रसारण आप सुबह सुन सकते हैं कार्यक्रम विश्व भारती में। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ने बिहार चुनाव में सीमांचल इलाके से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये घोषणा पार्टी के प्रमुख ओवैसी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने उनसे बात की और पूछा, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं?
ये हमने तो फैसला लिया है सीमांचल के इलाके में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे
जी,
और सीमांचल की जो पसमाइंदगी और नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग इलेक्शन में जाएंगे ताकि बिहार के असेंबली में सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। और हमारा ये भी मुतालबा होगा कि हिंदुस्तान के आईन की दफा 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाए, और यही हमारा मुद्दा रहेगा इलेक्शन में। हम जाएंगे, कितनी सीट हम लड़ेंगे वन खरीब में फैसला कर लेंगे, किसी पार्टी से भी हमारा कोई अलायंस नहीं होगा।
ये तय कर लिया आपने? वैसे सब कुछ इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं कि आपने बहुत हेजिटेट करके फैसला किया है इलेक्शन लड़ने का, पूरे दबंग होके, जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा में आप कूदे थे मैदान में चुनाव के, वैसे नहीं यहाँ कर रहे हैं।
नहीं नहीं, फिर कोई बात ही नहीं, क्यों ऐसा, जो भी सोच रहे गलत सोच रहे हैं। इलेक्शन जब लड़ेंगे तो इंशाल्लाह बेबाकी के साथ और पूरे एतमाद के साथ लड़ेंगे इलेक्शन इंशाल्लाह।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एनडीए गठबंधन के खेमे में आपके फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि ये मानना है लोगों का कि आपके वहाँ मैदान में कूदने से फायदा उनको होगा।
अब ऐसा है ना कि कोई अगर अपनी पॉलिसीज में नाकाम है, किसी में क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो बजाय अपने कमजोरियों की तरफ तवज्जो देने के वो हर चीज में इल्ज़ाम मेरे घर पे लाके थोप देते हैं, चलिए ठीक है, ये भी मेरे लिए एक एजाज़ है। मगर ये बताना पड़ेगा कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे इलेक्शन हार गए, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में महीने लड़ा वहाँ हार गए, झारखंड में हम नहीं थे, हरियाणा में नहीं थे, जम्मू कश्मीर में नहीं थे।
ये थे असदुद्दीन ओवैसी और उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी जुबैर अहमद। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़े, खेल समाचार। आज टेनिस में क्या हुआ आदेश?
जी मोहनलाल जी, बहुत बड़े उलटफेर हुए। अगर खासकर महिला एकल वर्ग की बात की जाए तो अमरीकी ओपन में इटली की फ्लाविया पेनेटा, जो कि 26वीं वरीयता हासिल है, उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता हासिल रोमानी के सिमोना हालेप को 6-1 6-3 से हराकर बाहर किया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका सेरेना विलियम्स को लगा। शीर्ष वरीयता हासिल ये खिलाड़ी गैर वरीयता हासिल इटली की ही रॉबर्टा विंसी से 2-6 6-4 6-4 से हारकर बाहर हो गई। तो इस तरह से इटली की दो खिलाड़ी फ्लाविया पेनेटा और रॉबर्टा विंसी अब फाइनल मुकाबले आपने सामने होंगी। उधर अगर पुरुष एकल वर्ग की बात की जाए तो यहां कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने अपने हमवतन स्टेन वावरिंका को 6-4 6-3 6-1 से हराकर बाहर किया। तो शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने क्रोएशिया के बारिन चिलिच को 6-0 6-1 6-2 से हराया। और अगर मिश्रित युगल की बात की जाए तो भारत के लिंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अमरीकी जोड़ी बाथेनी मैटिकसेंट्स और सैम क्वेरी की जोड़ी को 6-4 3-6 10-7 से हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। ये लिंडर पेस का 17वां खिताब है। और सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी महिला युगल वर्ग का फाइनल भी खेलेगी, यानी भारत से एक और फाइनल जीत की उम्मीद की जा सकती है।
की जा सकती, नजरें रहेंगी इस होने वाले मैच पर। इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेटलावद कस्बे के एक रेस्तरां में गैस सिलेंडर के धमाके में 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि वो सीरिया के पड़ोसी देशों को 3 अरब यूरो का ऋण दे ताकि गृहयुद्ध से प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में शुक्रवार को एक मस्जिद में क्रेन गिरने के हादसे की जांच शुरू हो गई है। कालका शिमला रेलमार्ग पर कालका के करीब एक टॉय ट्रेन के पटरी पर से उतर जाने के कारण 2 ब्रितानी महिलाओं की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम यानी कि बीबीसी इंडिया बोल को हम फिर से लेकर हाजिर होंगे 9:30 बजे। तब हमें आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।